एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत की बात करने वाले हैं, मदर टेरेसा। मतलब दुनिया भर में उनका नाम करुणा और आस्था का प्रतीक माना जाता है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हम उनकी जो जानी पहचानी छवि है उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखने की कोशिश करेंगे।
हाँ, हम बात करेंगे किताब मदर टेरेसा कम बी माई लाइट की। ये उनके निजी खतों पर आधारित है और उनके अंदरूनी सफर पर रोशनी डालती है।
सही कहा, और इस किताब को संपादित किया है फादर ब्रायन कोलो डी ज्यूक ने। वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी फादर्स के सदस्य हैं, और सबसे अहम बात, वो मदर टेरेसा को संत घोषित करने की प्रक्रिया के पोस्टुलेटर थे।
अच्छा, इसका मतलब उन्हें मदर टेरेसा के सबसे निजी लेटर्स और डायरीज तक सीधी पहुंच थी।
एग्जैक्टली, तो ये कोई बाहरी व्यक्ति का विश्लेषण नहीं है, ये उनके बेहद करीबी स्रोत से आई जानकारी है।
और ये किताब एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने लाती है कि मदर टेरेसा, जिन्हें हम हमेशा ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ देखते थे, वो अंदर ही अंदर लगभग 50 साल गहरे आध्यात्मिक अंधेरे से गुजर रही थी।
हाँ, मतलब ईश्वर की गैर मौजूदगी का एक गहरा दर्दनाक एहसास।
हाँ,
और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट इस किताब को इतना जरूरी बना देता है।
सही, ये उनकी कहानी को सिर्फ एक संत की कहानी नहीं रहने देता, ये एक इंसान के गहरे संघर्ष की कहानी बन जाती है, अटूट इच्छा शक्ति की और विश्वास की जो जटिल पहेली है उसकी कहानी।
और इसीलिए उनकी कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक है, शायद उन सबके लिए जिन्होंने कभी ना कभी अपनी आस्था में एक तरह का सूखापन या अकेलापन महसूस किया हो।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं।
जरूर, उनका जन्म हुआ था 1910 में अल्बानिया में। नाम था एग्नेस गोंगजा बोजाक्यू। परिवार काफी कैथोलिक था, तो बचपन से ही धर्म में गहरी रुचि थी।
हाँ,
पर 18 साल की उम्र में वो घर छोड़कर आयरलैंड चली गईं, लोरेटो सिस्टर्स को ज्वाइन किया, और वहां से फिर भारत आईं कलकत्ता।
कलकत्ता में वो पढ़ाने लगी सेंट मैरी स्कूल में।
हाँ, और शुरुआती सालों में वो एक बहुत खुशमिजाज समर्पित नान और टीचर थीं। उन्हें अपने काम से, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी से काफी संतुष्टि मिलती थी।
उस वक्त एक और खास बात हुई थी, शायद 1942 में कोई व्रत लिया था उन्होंने।
हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1942 में उन्होंने एक निजी व्रत लिया, ये कि ईश्वर उनसे जो कुछ भी मांगेगा वो कभी मना नहीं करेंगी, नॉट टू रिफ्यूज हिम एनीथिंग।
वाह, ये तो एक तरह का पूरा समर्पण था।
बिल्कुल, एक खुला चेक देने जैसा। और शायद उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि ईश्वर उनसे क्या मांगने वाला है। इसने उनके आगे के जीवन की दिशा तय कर दी।
और फिर आया वो साल 1946, वो निर्णायक मोड़, जिसे वो कहती थीं पुकार के भीतर पुकार, दार्जिलिंग की वो ट्रेन यात्रा।
हाँ, 10 सितंबर 1946, कलकत्ता से दार्जिलिंग जाते हुए ट्रेन में उन्हें कुछ बहुत ही गहरे रहस्यमय अनुभव हुए।
क्या हुआ था उस वक्त?
उन्होंने बताया कि जैसे उन्हें ईश्वर की आवाज सीधे सुनाई दी, एक स्पष्ट निर्देश मिला कि कॉन्वेंट की सुरक्षित जिंदगी छोड़ो और कलकत्ता की झुग्गियों में जाओ, सबसे गरीब लोगों के बीच उनकी सेवा करो।
अच्छा,
ये उनके लिए प्रेरणा दिवस बन गया। उस वक्त उन्हें ईश्वर की बहुत ज्यादा नजदीकी, एक तरह की रोशनी और प्यार का गहरा एहसास हुआ। यहां तक कि अपनी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पूरा खाका भी उन्हें उसी दौरान दिखा।
ये तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब रोशनी से भरा पल लगता है, लेकिन यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है ना, अंधेरे की शुरुआत।
हाँ, यही वो गहरा विरोधाभास शुरू होता है जिसकी हमने बात की थी। विडम्बना देखिए, जैसे ही उन्हें चर्च से इजाजत मिली और 1948 में उन्होंने अकेले कलकत्ता की झुग्गियों में काम शुरू किया, वो सारी आध्यात्मिक रोशनी, वो सुकून, वो नजदीकी का एहसास सब अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो।
एकदम से।
हाँ, एकदम से। और उनकी आत्मा पर एक गहरा घना अंधकार छा गया, और ये कोई मामूली उदासी नहीं थी, ये ईश्वर की उपस्थिति के पूरी तरह से गायब हो जाने का एहसास था। और ये अंधेरा उनकी मृत्यु तक करीब 50 साल तक बना रहा।
50 साल, यकीन करना मुश्किल है। बाहर उनका काम फल फूल रहा था, संस्था बढ़ रही थी, दुनिया उन्हें जान रही थी।
बिल्कुल।
और अंदर वो इस गहरे खालीपन, इस अंधेरे से जूझ रही थी।
हाँ, उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, खासकर कलकत्ता के आर्कबिशप फर्निन पेरियर को जो खत लिखे, उनमें इस दर्द का जिक्र है। उन्होंने लिखा, मेरे अंदर ईश्वर की जगह खाली है।
ओह,
एक भयानक नुकसान का एहसास है। खामोशी और खालीपन बहुत बड़ा है। उन्हें यह भी डर सताता था कि कहीं वो शुरुआती पुकार सिर्फ एक वहम तो नहीं थी,
कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई।
हाँ, कि कहीं ऐसा मेरी कल्पना तो नहीं थी, क्या मेरा काम ईश्वर को पसंद नहीं आ रहा। उस शुरुआती दौर में उनका डिके रहना सिर्फ और सिर्फ अंधे विश्वास पर आधारित था, उस आवाज की याद पर जो उन्होंने कभी सुनी थी, भले ही अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था।
जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया भर में फैल गईं, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वो एक ग्लोबल आइकन बन गईं, तब भी अंदरूनी अंधेरा वैसे ही था।
हाँ, ये अंधेरा बना रहा, शायद और गहरा भी हो गया। बाहरी सफलता और शोहरत के बावजूद अंदर से वो आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल खाली महसूस करती रहीं। लेकिन उनके जीवन के इस बात के दौर में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया।
अच्छा।
हाँ, जब उन्हें फादर जोसेफ न्यूनर के रूप में एक नए आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिले।
फादर न्यूनर, उन्होंने इस पीड़ा को समझने में कैसे मदद की?
फादर न्यूनर बहुत समझदार थे। उन्होंने मदर टेरेसा को समझाया कि उनका ये अनुभव शायद ईश्वर की नाराजगी या उनकी किसी कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की अंधेरी रात यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक प्रामाणिक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। ये एक ऐसा मुश्किल दौर है जिससे कई संत और रहस्यवादी गुजरे हैं।
अच्छा, ये तो एक जानी मानी आध्यात्मिक अवस्था है।
बिल्कुल, और फादर न्यूनर ने खास तौर पर इसे जोड़ा ईसा मसीह के क्रूस पर अनुभव किए गए अकेलेपन से। वो जो उन्होंने कहा था, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
हाँ।
और उनकी उस प्यास से जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, फादर न्यूनर ने कहा कि शायद मदर टेरेसा का ये अंधेरा उसी पीड़ा में, उसी प्यास में एक हिस्सेदारी है।
तो मतलब इस नई समझ ने उनकी पीड़ा का पूरा मतलब ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। अब उनकी पीड़ा सिर्फ एक बोझ या सजा नहीं रही, वो उनके मिशन का हिस्सा बन गई।
कैसे?
ये मसीह के दुख में शामिल होने का एक तरीका बन गया और उन अनगिनत लोगों के दर्द से जुड़ने का जरिया बन गया जो दुनिया में खुद को अकेला, अवांछित, ईश्वर से दूर महसूस करते हैं।
तो अब उनका काम सिर्फ गरीबों की भौतिक सेवा नहीं रहा?
नहीं, अब ये यीशु की उस गहरी प्यास, प्रेम और आत्माओं के लिए उनकी तड़प को बुझाने का एक तरीका बन गया। इस नई समझ ने उन्हें एक अजीब सी शांति दी, उनके अंधेरे को एक मकसद मिल गया।
ये सचमुच कमाल है, कैसे पीड़ा को इतने गहरे अर्थ में बदला जा सकता है। अच्छा, अगर हम उनके मूल दर्शन, उनके कोर वैल्यूज को देखें, तो क्या चीज थी जो उन्हें लगातार चलाए रखती थी इस अंधेरे के बावजूद?
देखिए, सबसे बुनियादी चीज तो वही थी, वो शुरुआती पुकार और वो 1942 का व्रत कि वो ईश्वर को कभी ना नहीं कहेंगे। ये उनके जीवन की नींव थे जिनसे वो कभी पीछे नहीं हटी, चाहे उन्हें अंदर से कैसा भी महसूस हो रहा हो। ये उनकी जिद थी एक तरह से।
और आस्था को लेकर उनका नजरिया क्या था, खासकर तब जब वो ईश्वर को महसूस ही नहीं कर पा रही थी?
यही उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनके लिए विश्वास या आस्था वो भावनाओं पर निर्भर नहीं थी, वो इच्छा शक्ति का एक निर्णय था, एक चॉइस।
मतलब
जब महसूस करने की सारी क्षमता जैसे छीन ली गई, जब सब कुछ खाली लगा, तब भी उन्होंने ये चुना कि वो विश्वास करेंगी। ये दिखाता है कि शायद सच्ची आस्था भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे है, वो एक स्थिर निर्णय है, अंधेरे में भी टिके रहने का संकल्प।
और पीड़ा को लेके उनका नजरिया कैसे बदला? आपने बताया कि शुरू में वो इसे शायद नाकामी समझती थी।
हाँ, शुरू में उन्हें लगता था कि शायद ये मेरी ही कोई कमी है, मेरा कोई पाप है, लेकिन फादर न्यूएन की मदद से उन्होंने इसे मसीह के दुख में भागीदारी के रूप में देखना सीखा। उनके लिए ये एक कीमती तोहफा बन गया, एक ऐसी चीज जो उन्हें यीशु के और करीब लाती थी और उन गरीबों के भी जिनकी वो सेवा कर रही थी। इसने उन्हें पीड़ा को सिर्फ सहने के बजाय उसे गले लगाने और उसमें अर्थ खोजने की ताकत दी।
सेवा का उद्देश्य भी फिर बदल गया होगा, सिर्फ भौतिक मदद से कुछ ज्यादा।
हाँ बिल्कुल, ये बन गया यीशु की प्यास बुझाने का मिशन। उनका हर काम, यहाँ तक कि उनकी अपनी अंदरूनी पीड़ा, सब कुछ यीशु को उनके दुख में सांत्वना देने का एक तरीका बन गया। वो मानती थी कि गरीबों की सेवा करके वो असल में सीधे यीशु की सेवा कर रही हैं।
उनकी मुस्कान की बहुत बात होती है, किताब उसे एक आवरण या क्लोक कहती है। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा हैरान करता है।
हाँ, ये बहुत मार्मिक पहलू है। उनकी वो जो विश्व प्रसिद्ध मुस्कान थी, वो अक्सर अंदर की खुशी का नतीजा नहीं थी।
अच्छा।
वो प्रेम का एक सचेत प्रयास था, उनके मिशन का एक जरूरी हिस्सा, दूसरों के लिए, खासकर दुखियों के लिए उम्मीद और रोशनी बनाए रखने का एक तरीका, भले ही वो खुद कितने ही गहरे अंधकार में क्यों ना हो।
उन्होंने खुद लिखा भी है इसके बारे में।
हाँ, उन्होंने लिखा, मुस्कान एक बड़ा पर्दा है जो अनगिनत दर्दों को ढक लेता है, ये शायद दूसरों को अपने बोझ से बचाने का भी एक तरीका था।
कमाल है। अच्छा, अगर हम उनके जीवन के तीन सबसे अहम मोड़, टर्निंग पॉइंट्स चुनना चाहें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला मोड़ तो साफ तौर पर 1946 की वो पुकार के भीतर पुकारी है, दार्जिलिंग ट्रेन यात्रा।
हाँ,
इसने उन्हें उनका जीवन ध्येय दिया, उनकी दिशा तय की। वो तीव्र आध्यात्मिक रोशनी और स्पष्टता का पल था।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा मोड़ उतना ही नाटकीय पर बिल्कुल उल्टा, 1948-49 में उस गहरे अंधकार का शुरू होना।
जैसे ही मिशन शुरू हुआ?
हाँ, जैसे ही मिशन शुरू हुआ रोशनी चली गई, ईश्वर की अनुपस्थिति का वो गहरा स्थायी अनुभव शुरू हुआ। ये लगभग 50 साल तक उनकी भीतरी सच्चाई बना रहा और उनके विश्वास की, उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुआ।
और तीसरा निर्णायक मोड़ क्या था?
तीसरा मोड़ था उनकी पीड़ा की वो धार्मिक पुनर्व्याख्या, रीफ्रेमिंग, जो फादर न्यूनर की मदद से हुई।
हाँ, जब उन्होंने उसे ईशु की पीड़ा से जोड़ा।
बिल्कुल, जब उन्होंने अपने अंधकार को सिर्फ एक तकलीफ नहीं बल्कि मसीह के दुख में भागीदारी और दूसरों के दर्द से जुड़ने का माध्यम समझा, इसने उनकी पीड़ा को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया। इसने उन्हें न सिर्फ टिके रहने बल्कि उस अंधकार को एक तरह से प्यार करने की क्षमता दी।
प्यार करने की?
हाँ, क्योंकि अब उसका एक गहरा अर्थ था। यहां से वो शांति और उद्देश्य का भाव आया जिसका जिक्र उन्होंने बाद के सालों में किया। उन्होंने लिखा भी, मैं अब अंधेरे से प्यार करने लगी हूँ।
ये सब जानकर मदर टेरेसा के इस छिपे हुए संघर्ष से हम जैसे आम लोग अपनी जीवन के लिए क्या सबक ले सकते हैं?
मुझे लगता है बहुत कुछ। शायद सबसे पहली बात तो यही कि शक करना, आस्था में सूखापन महसूस करना या कभी ईश्वर से दूरी महसूस करना, ये कोई आध्यात्मिक विफलता नहीं है। ये अनुभव सफर का हिस्सा हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के जीवन में भी जिन्हें हम महान समझते हैं। तो शायद हमें अपने ऐसे अनुभवों को लेकर कम दोषी महसूस करना चाहिए।
और ये बात कि भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी कमिटमेंट्स पर टिके रहना, ये तो जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है ना?
बिल्कुल, उनका जीवन ये दिखाता है कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा मोटिवेटेड या अच्छा महसूस करें तभी अपने मूल्यों या लक्ष्यों पर टिके रह सकते हैं। जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चलती, सचेत निर्णय, इच्छा शक्ति, संकल्प, ये भी उतने ही जरूरी हैं।
हाँ, किसी भी रिश्ते में, काम में या निजी लक्ष्य में टिके रहना तब भी जब अच्छा महसूस ना हो रहा हो।
एग्जैक्टली।
पीड़ा में अर्थ खोजने की बात भी बहुत शक्तिशाली लगी।
हाँ, उनकी कहानी दिखाती है कि मुश्किलों को सिर्फ झेलने की चीज न मानकर उन्हें दूसरों के साथ गहरी सहानुभूति, गहरी हमदर्दी और जुड़ाव का जरिया बनाया जा सकता है। जब उन्होंने अपनी पीड़ा को यीशु और गरीबों की पीड़ा से जोड़ा तो वो अकेली नहीं रही और उनकी पीड़ा बेकार नहीं रही। ये हमें अपनी तकलीफों को एक बड़े मानवीय अनुभव के हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है।
और वो सार्वजनिक छवि और निजी सच्चाई का फासला, जैसे उनकी मुस्कान वाली बात, उससे क्या सीख सकते हैं?
हाँ, ये प्रामाणिकता पर एक अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी दूसरों पर अपना बोझ ना डालना, उनके लिए उम्मीद बनाए रखना, ये भी शायद प्यार का एक रूप हो सकता है। ये दिखावा नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए एक सचेत चुनाव है।
सफलता और संतुष्टि को भी शायद हमें फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। उन्हें दुनिया की नजर में तो हर सफलता मिली, पर अंदरूनी सुकून शायद उस तरह का नहीं था।
सही कहा। उनका जीवन हमें चुनौती देता है कि हम सफलता को सिर्फ निजी खुशी या संतुष्टि की भावनाओं से ना जोड़ें। उनके लिए सफलता शायद मिशन के प्रति वफादारी में थी, दूसरों की सेवा में थी, भले ही उन्हें अंदर से कोई इनाम महसूस ना हो रहा हो। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हमेशा एक खुशनुमा जीवन ना हो, पर शायद ज्यादा गहरा हो सकता है।
और उनकी वो मशहूर कहावत, छोटी चीजों को बड़े प्यार से करो।
उनके इस अंदरूनी संघर्ष को जानने के बाद ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है ना?
हाँ।
जब सब कुछ खाली और अंधकार में लगता था, तब शायद वो सिर्फ अपने सामने मौजूद छोटे ठोस काम पर ही ध्यान दे सकती थी। किसी की देखभाल करना, किसी का हाथ पकड़ना और उसे पूरे प्यार और ध्यान से करना, ये हम सबके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगे, सिर्फ अगले छोटे कदम पर ध्यान दो और उसे अच्छे से करो।
इस पूरी गहरी चर्चा के आखिर में अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक रूप से मेरे लिए सबसे ज्यादा छूने वाली बात है उनका वो चुनाव। अंदर गहरे दर्द और अकेलेपन के बावजूद जानबूझकर दूसरों के लिए खुशी और रोशनी फैलाने का फैसला करना।
हाँ?
उनकी वो मुस्कान जो अनगिनत दर्दों को ढकने वाला बड़ा पर्दा थी, वो प्रेम और आत्मत्याग का एक असाधारण उदाहरण है। ये इंसान के जज्बे की ताकत दिखाता है।
और एक बौद्धिक सबक या अंतर्दृष्टि?
बौद्धिक स्तर पर सबसे जरूरी बात यह है कि सच्ची आस्था सिर्फ भावनाओं या रहस्यमय अनुभवों पर ही नहीं टिकती, ये इच्छा शक्ति का काम है, एक दृढ़ निश्चय। ईश्वर की गैर मौजूदगी और खालीपन के एहसास के बावजूद टिके रहने का एक सचेत फैसला, ये आध्यात्मिकता और पवित्रता की हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है और बताता है कि विश्वास की असली गहराई शायद भावनाओं की कमी में ही सबसे ज्यादा परखी जाती है।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जिसे हर कोई अपने जीवन में लागू कर सकता है।
सार्वभौमिक सबक यह है कि किसी मकसद या वादे पर टिके रहना तब भी मुमकिन है जब कोई पॉजिटिव एहसास या अंदरूनी इनाम न मिल रहा हो। जैसा उन्होंने खुद कहा था, अगर मैं कभी संत बनी तो मैं निश्चित रूप से अंधकार की संत बनूंगी।
वाह,
ये दृढ़ता और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच ही उजागर होती है। उनका जीवन दिखाता है कि अंधेरे में रहते हुए भी दूसरों के लिए रोशनी बनना संभव है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।